है आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। भारत और मलेशिया के बीच कल श्रम और रोजगार, आयुर्वेद और पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, संस्कृति, पर्यटन और युवा तथा खेल के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच नागरिक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार और आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए गए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के बीच वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में इसमें एक नई ऊर्जा आई है। दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के साथ फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत के यूपीआई को मलेशिया के पेनिट से जोड़ने का काम किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रूपये और मलेशिया के रिंगिट में किया जा सकता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, बहुलवाद और परस्पर सम्मान की भावना दोनों देशों के संबंधों का आधार रही है। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने हिस्सा लिया। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल की तलाश की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक के बाद प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सितंबर 2022 में टोक्यो में पिछली बैठक के बाद से दोनों पक्षों ने पर्याप्त प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में परिणाम उम्मीदों से अधिक रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच उत्कृष्ट समन्वय के कारण ही संभव हो सका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि बैठक में रक्षा और सुरक्षा पर व्यापक और सकारात्मक विचार साझा किए गए। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के आसपास पिछले 2 वर्षों में क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण काफी विकसित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में सोशल मीडिया से पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाइस एडमिरल सर्जन आर सरीन की अध्यक्षता में कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। न्यायालय ने कोलकाता के आरजी केयर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों और विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम तैनात करने का भी आदेश दिया। पीठ ने मामले से निपटने के पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल के अधिकारियों के तौर तरीकों पर गहरी नाराजगी व्यक्त। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठाणे जिले के बदनापुर स्कूल घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी और सरकार ने इस मामले में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का फैसला किया है। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि बदलापुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, घृणित और दिल दहलाने वाली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।